हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्केनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राग्रह न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति। व्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरम्। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधरुणबिंबफल धरोष्ठा पुरेन्द्रसुंदरमुखा अरविंदनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवयेस्तवे वेदे साङ्गपत्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद अध्याय 14 जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान हो जाना। वास्तव में भक्तों, एक भक्त के लिए, एक जीव के लिए इस संसार में इससे बड़ी हानि और कोई नहीं हो सकती। साहानि तन महत छिद्रम। जब भगवान से उसका विच्छेद हो जाए, जब भगवान से वो बिछड़ जाए, उससे बड़ी हानि किसी व्यक्ति के लिए, किसी जीव के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए आज जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से चले गए हैं, तो उसके कारण धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं और उनको केवल अपशकुन दिखाई देता है। वास्तव में ये संसार बिल्कुल अपशकुन ही बन जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में भगवान नहीं है। इसीलिए वो भगवान को याद करते हुए कहते हैं, केवल उन्हीं से तो हमारा राजसी ऐश्वर्य था, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा और शत्रु पर विजयी तथा उच्च लोकों में भावी निवास, सभी कुछ संभव भगवान की कृपा से हुआ। यह सब हम पर उनकी अहित की कृपा है। युधिष्ठिर महाराज भीम से इनको कहते हैं कि अब भगवान नहीं रहे तो समझो कुछ नहीं रहा हमारे पास। जरा देखो तो कि देवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न कितनी कितनी आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट भावी भविष्य में खतरे की सूचना दे रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज उन अपशकुनों के विषय में कहते हुए कहते हैं कि मेरे शरीर का बायां अंग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार भड़क रही हैं, भय से मेरा हृदय धड़क रहा है, ये सब अनिष्ट घटनाएं सूचित करने वाली हैं। हे भीमसेन, जरा देखो तो यह सियारन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखते हुए रो रही है और मुख से अग्नि उगल रही है, और यह कुत्ता किस तरह निर्भीक होकर मुझ पर भौंक रहा है। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गौ जैसे उपयोगी पशु मेरी बाई ओर से निकल जाते हैं और निम्न पशु यथा गधे मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लू तथा उनके प्रतियोगी कौओं की चीखें मेरे हृदय को दहला रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहती हैं। जरा देखो तो सही किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। जरा बादलों के बिना गर्जना तो सुनो और आकाश से गिरती हुई बिजली को तो देखो। वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखेर रही है। अंधेरा उत्पन्न हो रहा है। बादल सर्वत्र रक्तम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपस में लड़ाई कर रहे हों। भ्रमित जीव अग्नि से ज्वलित तथा रोते प्रतीत हो रहे हैं। नदियां सहायक नदियां तालाब जलाशय तथा मन सभी क्षुब्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है। यह कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है। ना तो बछड़े गांवों के तनों से दूध पी रहे ना गाय दूध दे रही हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रो रही हैं और बैलों को चरागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं दिख रही है। मंदिरों में अर्चा विग्रह रोते हुए शोक कर रहे तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर क्राम कस्बे बगीचे खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन हो गए हैं तथा समस्त आनंद से रहित हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्ति आने वाली है। मैं सोचता हूँ कि यार यह सारी पृथ्वी पर उत्पात विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के चिन्हित हुए, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब पृथ्वी को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। भगवान अब इस संसार में नहीं रहे। वो भीमसेन के साथ यही वार्ता कर रहे हैं तो उसके बाद सूत गोस्वामी ऋषियों को कहते हैं, हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तब अर्जुन यदुओं की पूरी अर्थात द्वारिका से वापस आया। और आने के बाद क्या हुआ आज बताएंगे। श्लोक नंबर 23 से हम शुरू करेंगे। कृपया साथ साथ में श्लोक उच्चारण करने का भी प्रयास कीजिए। तम पादयोर निपतितम अयथा पूर्वमातुरम अधोवदनम अभिन्दुन सृजन्तम नयनाब्जयो। तम पादयोर निपतितम अयथा पूर्वमातुरम अधोवदनम अभिन्दुन सृजन्तम नयनाब्जयो। तम पादयो, तम मतलब उसको, किसको, अर्जुन को। जब अर्जुन को देखा युधिष्ठिर महाराज ने तो पादयो निपतितम, उन अर्जुन ने पांव पर गिरकर अयथा पूर्व मतलब ऐसा उनका ऐसा एटीट्यूड ऐसा था जैसा पहले कभी भी, इतना निराश आतुरम, इतनी ज्यादा निराश दिख रहे थे अर्जुन। जाहिर सी बात है अब द्वारिका से आए हैं, द्वारिका का समाचार देने वाले हैं और कितने निराश हैं वो। इतने निराश तो वो पहले कभी भी नहीं होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि पूर्वम अयथा पूर्वम आतुरम, इतने निराश पहले कभी भी नहीं थे। तो उसने क्या किया, अधवदनम, भाई को प्रेम से नहीं मिले, मुख नीचा किया। और अब बिंदु मतलब जल सृजंतम, उनकी आंखों में जल उत्पन्न हो रहा था। नयन अब्जयो, और कमल जैसे नेत्रों से आंसू निकल रहे थे, मतलब इतने ज्यादा निराश थे अर्जुन कि वो रो रहे थे। अनुवाद, जब वे राजा के चरणों पर झुके तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी, यानी ऐसा निराश अर्जुन को उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू छू रहे थे। इसका कारण क्या था? क्योंकि अर्जुन देखकर आए थे कि कृष्ण अब संसार में नहीं है। कृष्ण भक्त के लिए सबसे बड़ी निराशा, सबसे बड़ा दुख यही है कि उसके जीवन से भगवान चले जाएं। और मैं आप लोग को बताऊं कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान आज भी अपने नाम के द्वारा हमारे साथ हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का दिन वह होता है जिस दिन हम भगवान के पवित्र नाम का सही तरह से जप ना कर सके। तो वास्तव में भक्तों, हमें बहुत दुखी होना चाहिए, अपने भक्त अपने जप के लिए ईगर होना चाहिए कि वह जप जो है वो हमें कृष्ण से मिलाता है। इसलिए यदि हम भगवान का पवित्र नाम का जप नहीं करते, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते, तो उसी तरह से हमें भी निराश होना चाहिए। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं, विलोक्योत विघ्न हृदयो विच्छायम अनुजम नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मत्ति संस्मरणारदीरितम्। विलोक्योत विघ्न हृदयो विच्छायम अनुजम नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मत्ति संस्मरणारदीरितम्। विलोक्यो का मतलब देखा, उद्विग्न हृदय और विच्छायम मतलब उनका हृदय इतना ज्यादा दुखी था, चिंतित था। उद्विग्न मतलब बहुत ज्यादा चिंतित हृदय था अर्जुन का, और मुख भी पीला पड़ गया था। विच्छायम मतलब पीला मुख हो गया था अर्जुन को। तो फिर जब उसकी ये दशा देखी किसने, नृप मतलब राजा ने, तब उनसे रहा नहीं गया। पृच्छति स्म सुहृन् मध्य, पृच्छति स्म उन्होंने पूछना शुरू किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अर्जुन को मैं रूम में लेके जाता हूँ, आराम से पूछता हूँ उसकी क्या ये कंडीशन, उसकी क्यों है, क्यों रो रहा है, क्यों दुखी है। वो पृच्छति स्म सुहृन् मध्य, जितने भी मित्र वहां पर बैठे हुए थे सभा में, उनके सामने ही अभी उनको फौरन से स्मरण नारद, जैसे ही नारद, ईरितम का मतलब होता है सूचित, नारद जी ने पहले ही उनको सूचित कर दिया था, सूचना दे दी थी कि भगवान का बहुत ज्यादा काम हो गया, अभी थोड़ा सा काम रह गया, वो जा रहे हैं। तो फिर उनको फौरन से याद आ गया कि नारद जी ने संकेत तो दिया था। तो फिर सब लोग के सामने ही अर्जुन से कारण पूछने लगे। अनुवाद देखिए, हार्दिक चिंताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। क्या पूछा? युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्थ पुण्याम्नः स्वजना सुखमासते मधुभोज दशार्हारः सात्वतान्धकविष्णयः कच्चिदानर्थ पुण्याम्नः स्वजना सुखमासते मधुभोज दशार्हारः सात्वतान्धकविष्णयः कच्चिदानर्थ पुण्याम्नः। कच्चिद, युधिष्ठिर ने कहा, क्या अनर्थ पुण्याम, अनर्थ पुण्याम पुण्याम जो है वो द्वारिका को कहा जाता है, और उसके अंदर आप अभी द्वारिका गए थे तो न स्वजना, तो वहां पर जो हमारे स्वजन हैं, हमारे संबंधी हैं, वो सुखम आसते, मुझे बताओ सब सुखी तो हैं, तुम क्या देखकर आए हो, क्यों दुखी हो। वो सुख से तो दिन बिता रहे हैं और फिर नाम बता रहे हैं, जो यदुवंश के जो मुखिया हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं कि मधु भोज दशारह आरह, मधु महाराजा मधु, भोज दशारह और आरह सात्वत, सात्वत वैसे कहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं उनको, अंधक, अंधक मतलब वो भी एक नाम है उनका, और ऋषया मतलब ऋषि परिवार के ये सब मुख्य स्वजन हैं जो बहुत ज्यादा भक्त हैं भगवान के और हमारे संबंधी हैं। आप बताओ क्या ये सुखी तो हैं? सुखम आसते। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भ्राता मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु भोज दशारह आरह सात्वत और अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से तो बिता रहे हैं। आगे पूछ रहे हैं, शूरो मातामह कश्चित् स्वस्त्यास्ते वाथ मार्ष मातुल सानुजा कश्चित् कुशल्यान कदुन्दुभि शूरो मातामह कश्चित् स्वस्त्यास्ते वाथ मार्ष मातुल सानुजा कश्चित् कुशल्यान कदुन्दुभि। शूरो, शूर से जो मातामह है यानी नाना जी है हमारे, कचित स्वस्ति, सब शुभ तो है वहाँ पर, सब ठीक तो है, शुभ से आस्ते हैं, अपने दिन सुख से तो बिता रहे हैं। वा यथ मार्षि मतलब अथवा जो अतेव मार्षि मतलब आदरणीय मातुल्य मेरे जो मामा है वहाँ पर, स अनुज अपने छोटे भाइयों सहित, कचित कुशली सब कुशल से तो हैं, आनक दुन्दुभि, आनक दुन्दुभि जो था वासुदेव जी का नाम था, इससे पूछ रहे हैं मेरे आदरणीय नाना जी शूरसेन तो प्रसन्न हैं, तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई सब ठीक तो हैं। आगे पूछते हैं, सप्त स्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजा आस्ते सस्नुषा क्षेमम् देवकी प्रमुखा स्वयं सप्त स्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजा आसते सस्नुषा क्षेमम् देवकी प्रमुखा स्वयं। सप्त स्वसारस्तत्पत्न्यो, सप्त मतलब सात, स्वसार मतलब जो आपस में बहने हैं, तत्पत्नियां किसकी, वसुदेव पहले पूछा ना दुन्दुभि, आनक दुन्दुभि ठीक है और उनकी सात पत्नियां जो आपस में बहने हैं, वो जो मातुलान्या हमारी मासियां हैं, मौसियां हैं हमारी, सह आत्मजा, आत्मजा कहते हैं उनके पुत्र, उनके पुत्र हैं उनके साथ सब आसते सश्रोणा अपनी बहुओं के साथ सब कुशल से तो हैं, क्षेम मतलब सुखी तो हैं, और उन सब पत्नियों में जो प्रमुख हैं, देवकी प्रमुखा स्वयं, जो देवकी हैं जो वासुदेव की प्रमुख पत्नी है उसके विषय में बताओ वो कैसी हैं। आगे के अनुवाद, देवकी आदि उनकी सात पत्नियां परस्पर बहने हैं, वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं। आगे पूछते हैं, श्लोक नंबर 28-29 में पूछते हैं, कच्चित् राजा हुको जीवत् यस्पुत्रोऽस्य चानुज ऋदिकः ससुतो क्रूरो जयन्त गदसारणा आसते कुशलं कच्चित् ये च शत्रु जिदादय कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभो कच्चिद् राजा हुको जीवत् यस्त पुत्रोऽस्य चानुजः ऋदिकः सुसुतो क्रूरो जयन्त गदसारणा आसति कुशलं कच्चित् ये च शत्रु जिदादय कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभु। कच्चित् राजा हुको, राजा आहुक उग्रसेन का दूसरा नाम था। अब वो राजा उग्रसेन जीवित पूछ रहे हैं क्या द्वारिका में राजा उग्रसेन जो भगवान के नाना श्री थे वो अभी तक जीवित हैं और असत असत मतलब जो शैतान था दुष्ट था उसका पुत्र कंस क्या वो च अनुज अपने अनुज के साथ जीवित है और दूसरों के विषय में भी पूछ रहे हैं ऋदिक अपने पुत्र कृतवर्मा समेत और अक्रूर जयंत गद सारण ये सब कुशल से हैं कुशल कच्चित शत्रुजित शत्रुजित और उसके दूसरे जो सेनापति हैं कच्चित आस्ते सुखम क्या वो सब सुखी सुख से हैं। अब इतना पूछने के बाद पूछ रहे हैं रामो भगवान सात्वताम प्रभु मुझे ये बताओ कि बलराम और कृष्ण जो हम जैसे अपने दासों के प्रभु हैं जो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं क्या वो सुरक्षित हैं। अनुवाद क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उसका छोटा भाई अब भी जीवित है क्या ऋदिक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से हैं क्या अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजित प्रसन्न है भक्तों के रक्षक कृष्ण और बलराम कैसे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारिका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगरी गए होंगे अतएव मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ सही है। अब ये सारे जो उग्रसेन हैं कंस हैं वो तो मथुरा में रहते थे तो श्री प्रभुपाद जी बोलते कि मथुरा और द्वारिका के बीच में द्वारिका और हस्तिनापुर के बीच में मथुरा पड़ती है तो अभी उनके विषय में पूछ रहे हैं उग्रसेन कैसे थे कंस कैसे थे अभी तक जिंदा है या मर गए। तो आगे कहते हैं संबंधियों के विविध नामों में से भगवान कृष्ण के बड़े भाई राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है जैसे कहा गया कि रामो भगवान सात्वताम प्रभु। तो बलराम जी को भगवान क्यों कहा गया उसको श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व हैं और उनके अंश हैं और भगवान कृष्ण के प्रकाश विग्रह हैं। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय हैं किंतु वे अन्य तमाम जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व जीव परमेश्वर के अंश विस्तार हैं और वे सब गुण तथा परिमाण की दृष्टि से भगवान के तुल्य हैं लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं और वे भगवान के तुल्य नहीं हैं। जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है वह संसार का अधम जीव समझा जाता है। श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहितु की कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने जगाई तथा मदाई नामक दो अत्यंत ही अदम जीवों का उद्धार अपनी अहितु की कृपा द्वारा किया था। अतएव यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। उनकी दैवी कृपा से ही कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुंच सकता है। अतएव श्री बलराम के कृपा अवतार भगवान के कृपा अवतार हैं श्री बलराम जी जो गुरु के रूप में हैं और शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो सुत गोस्वामी कहते हैं कि रामो भगवान सात्वताम प्रभु के भक्तों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है और बलराम जी बल मना शक्ति और बलराम जी गुरु तत्व हैं भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं ताकि वो अपनी भक्ति को दृढ़ता पूर्वक कर सकें। तो ये बलराम जी की महिमा बताई श्री प्रभुपाद जी ने कि वो विष्णु तत्व हैं, और विष्णु तत्व और जीव तत्व में बहुत बहुत अंतर है। जीव कभी भी विष्णु तत्व नहीं होता है, और इसीलिए कुछ लोग जो ऐसे कहते हैं कि हम भी भगवान के समान हैं, तो ये बहुत बड़ा धूर्त होते हैं जो ऐसे कहते हैं। वास्तव में जीव जो है वो भगवान का दास है, भले ही उसके अंदर भी भगवान का अंश है, परंतु जो विष्णु तत्व होते हैं वो भगवान के तुल्य ही होते हैं। इसलिए भगवान उनको अपनी शक्ति से, मतलब उनके द्वारा कोई कार्य करवाते हैं, जैसे भक्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बलराम जी के रूप में स्वयं कृष्ण ही आते हैं। आगे पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज, प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गंभीररयो निरुधो वदति भगवानुता। प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गंभीररयो निरुधो वदति भगवानुता। प्रद्युम्न जो कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, सर्ववृष्णीनां सारे वृष्णि परिवार के सदस्यों के समुख यानी सुखम उनके सुखम आस्ते के, प्रद्युम्न और सारे वृष्णि कुल वो सुख से बैठा, सुख से तो है। महारथ यानी महान सेनापति, गंभीर गहराई से रया दक्षता, अनिरुद्ध जो भगवान के पौत्र हैं, वर्धते भगवान उत, वर्धते मतलब बढ़ाता है भगवान, उत यानी अवश्य चाहिए। अनुवाद देखिए, ऋषि कुल के परम सेनापति प्रद्युम्न किस तरह हैं, वे प्रसन्न तो हैं और भगवान के पूर्ण अर्श अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी भगवान के अंश हैं, और इस तरह वे दोनों भी विष्णु तत्व हैं। द्वारिका में भगवान वासुदेव अपने पूर्ण अंशों संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीला में व्यस्त रहते हैं, अतएव उनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध नाम के साथ आया। जैसे यहाँ पर बताया गया, अनिरुद्ध वदते भगवान होता कि अनिरुद्ध को भी कहा गया, क्योंकि भगवान के जो हमने पहले एक्सपेंशन पढ़े थे ना शुरू के, जो व्यू निकलते हैं, वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न और शंकरशन, ये सारे के सारे द्वारिका में थे। वासुदेव जी थे, शंकरशन के रूप में बलराम जी थे, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो इन सबको भगवान कहा गया है, उसको यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे श्लोक नंबर 31 में कहते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण के अन्य पुत्रों के विषय में पूछते हैं। सुषेण चारुदेशांश्च सांभोजं भवति सुतः अन्ये च काश्मी प्रवरा पुत्रा ऋषभादय सुषेण चारुदेशांश्च सांभोजं भवति सुतः अन्ये च काश्मी प्रवरा सपुत्रा ऋषभादय। सुषेण चारुदेश च सांब उसके और जाम्बवती के पुत्र जो थे वो अन्य च काश्मी, और इसके अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण का तो बहुत बड़ा परिवार है, तो प्रवरा उनके सेना नायक, सपुत्रा अपने अपने पुत्रों के साथ, ऋषभ आदय जो ऋषभ इत्यादि जो से, वो सब आनंद से तो हैं। अनुवाद देखिए, कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र यथा सुषेण चारुदेशण और जाम्बवती पुत्र साम तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से भगवान के कुटुंब परिवार के विषय में बता रहे हैं। श्री रूपा जी कहते हैं, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी और हर एक के 10-10 पुत्र थे, अतएव कुल मिलाकर 16,108 × 10 = 16,01,080 पुत्र थे और सब बड़े हुए तो उनके भी अपने अपने पिता की तरह 10-10 पुत्र हुए, जिससे भगवान के परिवार में 16,10,800 सदस्य थे। भगवान के घर के लोग थे इतने, और भगवान असंख्य जीवों के पिता हैं, अतएव उनमें कुछ ही इस पृथ्वी पर द्वारिका के भगवान की दिव्य लीलाओं में उनके साथ साथ रहते थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान के परिवार में इतने सारे लोग थे। भगवान के साथ अपनी तुलना ना करना ही श्रेष्ठकर होगा। और ज्यों ही हम भगवान के दिव्य पद के थोड़े से भाग को समझ लेते हैं, त्यों ही यह बात एक सच्चाई बन जाती है। राजा युधिष्ठिर ने द्वारिका में स्थित भगवान के पुत्रों तथा पौत्रों का कुशल समाचार पूछते समय उनमें से केवल सेना नायकों का ही नाम लिया है, क्योंकि भगवान के परिवार भर के सदस्यों के नाम स्मरण रख पाना राजा के लिए संभव ना था, और अगर लिखते ना इतने सारे नाम तो भी पूरा स्कंद इसमें से ही भर जाता। इसलिए सिर्फ जो सेना नायक है उन्हीं के बारे में नाम ले लेके पूछ रहे हैं कि ये सब कैसे थे, अर्जुन इन सब के बारे में बताओ, तुम क्यों इतने ज्यादा दुखी हो, तुम्हारा क्यों मुंह इतना निराश है, इतना दुखी तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा, तुम मुझे एक एक के बारे में बताओ, वो सब सुख से हैं, उनके पुत्र तो सुख से हैं, क्या हो रहा है वहां पर, कैसे हैं सब। तो देखते हैं अब आगे राजा क्या पूछते हैं और अर्जुन क्या जवाब देते हैं। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को बहुत अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।